पर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ओम शांति। हम सभी करतल ध्वनि से दीपा दीदी का स्वागत करेंगे। इस प्रोग्राम के थीम का ये दूसरा सत्र है और अभी का विषय है स्पिरिचुअलिटी द मेथड टू सक्सीड, आध्यात्मिकता सफलता का तरीका कैसे ये हो। आज हमारे सामने दीपा दीदी है जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी दीपा दीदी से परिचित ही हैं, कैसे वो अपने मधुर वाणी द्वारा सबके दिलों में आध्यात्मिकता का दीप जगाएंगे। दीपा बहन,
बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी बहन, आप सुबह से ही लेकर आज के सत्रों में बहुत सारी गहरी और सुंदर बातें सुन रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, लेकिन जरूर बहुत सुनना मुश्किल लगता होगा क्योंकि वैसे आप व्यापार और उद्योग में प्रैक्टिकल कारोबार में व्यस्त रहते हैं, तो डे टू डे लेवल में एक्शन में ज्यादा रहते हैं और ऐसे बैठकर बहुत समय तक सुनना मुश्किल भी जरूर है। लेकिन हम आपके साथ सिर्फ 3 दिन के लिए हैं, इसलिए थोड़ा आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, कष्ट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये इस रूप से कार्यक्रम बना है कि कुछ जो विशेष बातें हैं वो आपके साथ हम जरूर शेयर करें। फिर दोपहर में आपको रेस्ट का भी समय है और फिर रात्रि को भी, तो ये बातों को आप फिर अपने अंदर मनन भी कर सकते हैं, विशेष अपने साथ बैठकर इसका चिंतन भी कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी बातें हम सुन रहे हैं हमें अपने जीवन के साथ उसको कनेक्ट करना जरूरी है। जब हम अपने व्यापारी के रूप में या उद्योग में हम कार्य कर रहे हैं तो अपने औद्योगिक जीवन के साथ ये बातों को जोड़ते हैं, तब इसको हम और गहराई से समझ सकते हैं। और जो अपने अंदर अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में जो रोल आप प्ले कर रहे हैं, वहां जो और सुंदर परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो जो भी बातें हम सुन रहे हैं उसको हम सिर्फ जो सुनने का ही आनंद न लें, लेकिन प्रैक्टिकली अपने लाइफ के कॉर्पोरेट या अपने इंडस्ट्री या अपने व्यापारी जीवन के साथ इसको जोड़ें जरूर। क्योंकि जितनी ये बातें आनंदमय हैं उतना ही ये बातें प्रैक्टिकल बहुत हैं। ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता है कि यहाँ जो भी हम बातें सुन रहे हैं परमात्मा डायरेक्ट हमें ये ज्ञान दे रहा है और रोज के हमारे जीवन में इसको हमें प्रयोग करना है। इसलिए जैसे दीदी भी बता रहे थे, योग माना ही प्रयोग। तो ये ज्ञान की बातों को सुनते हुए आप अपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ इसको जरूर रिलेट करेंगे। तो हम फिर प्रैक्टिकली हम कनेक्ट करके अपने अंदर ये चिंतन जरूर आरंभ करेंगे कि कैसे इसका हमें अपने जीवन में प्रयोग करना है, इससे सफलता प्राप्त करनी है। हमारे सामने एक छोटी सी लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्नों के आधार से हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें कि हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता दैनिक कारोबार और व्यवसाय में झलक रही है। ये कुछ प्रश्न अपने आप से आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, जल्दी ऐसे महसूस करते हैं सुबह से ही, लेकिन कारोबार में बिजी होकर ऐसे लगता है आज बहुत थक गए हैं। हम छोटी छोटी बातों में औरों के साथ इरिटेट हो जाते हैं, जब हमने जैसे योजना बनाई है उस अनुसार नहीं हो रहा है तो छोटी छोटी बातों में जल्दी इरिटेशन आ जाता है। क्या हमें कोई भी समस्या जो हमारे सामने आती है उसका सही रूप से सामना करना, उसको समाधान देना मुश्किल लगता है? कुछ कुछ समस्याएं तो जो दैनिक है वो ठीक है रूटीन में, लेकिन कोई नई ऐसी समस्या आती है तो उसका समाधान करना, कोप अप करना मुश्किल लगता है। क्या कई बार हम उन बातों के बारे में बहुत सोच रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते? हम समझ रहे हैं, जानते हैं कि ये बात के बारे में हम कुछ चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये बाहरी परिस्थितियों के आधार से, सिचुएशन बाहर से है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। क्या कई बार ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे इनफ आराम नहीं मिल रहा है, मुझे ज्यादा आराम की आवश्यकता है, थकान बहुत है, शरीर को कहीं ना कहीं कष्ट फील हो रहा है, आराम मुझे आवश्यक और ज्यादा है? क्या कई बार औरों की बातें, जो बातें हमें अच्छी लगती है वो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जो बातें हमें ठीक नहीं लगती, हम उन बातों से सहमत नहीं है, उस बातों के बारे में बार बार सुनना मुश्किल लगता है, औरों की बातों को सुनना और समझना मुश्किल लगता है? क्या कई बार हम कोई परिस्थिति जब हमारे सामने आती है और निर्णय हमें लेना है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं? फिर से जो दैनिक सिचुएशन है उसका निर्णय लेना सहज है, लेकिन कोई नई परिस्थितियां जो आती है उस समय निर्णय लेने में हमें कंफ्यूजन लगता है, मूंझ जाते हैं। क्या हमें लगता है कि सारे दिन में हमने योजना बनाई, प्लानिंग किया टाइम, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में ज्यादा समय चला गया, हम लास्ट में देखते हैं तो बहुत कम कार्य आज सारे दिन में कर पाए। क्या लगता है औरों के साथ, कुछ लोग तो ठीक है लेकिन बाकी ये लोगों के साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका अपना व्यवहार ऐसा है, उनके ऐसे संस्कार है, उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या आपको बार बार सहज रूप में सिरदर्द हो जाता है? तो हम ये प्रश्नों को अपने आप से चेक करें। अगर हम फाइंड मिलता है हमें ये फाइंड करते हैं कि 5 से ज्यादा प्रश्नों में यस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जी? स्ट्रेस में हमें, अच्छा, और जी हमें परिवर्तन करना है। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि क्या है, बहुत समय से सुन रहे हैं तो अभी फिर सुनेंगे तो नींद भी आ जाएगी, नहीं तो एक्टिव रहने के लिए अच्छा लगेगा बातचीत करें। अच्छा, हमें कुछ परिवर्तन करना है और एक्सेप्टेंस हमारा कम है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस परिस्थिति और व्यक्तियों का के प्रति कम है, ये महसूस होता है। और ये महसूस होता है कि स्पिरिचुअलिटी जीवन में व्यक्तिगत रूप में हम उसको महत्व दे रहे हैं लेकिन एक्शन में, प्रैक्टिकल में कम है, नहीं है नहीं कहेंगे लेकिन कम है। उसकी जो शक्ति है आध्यात्मिकता की, जिससे प्रैक्टिकल जीवन में हमें अनुभव हो खुशी का और शक्ति का, वो कम है। हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं लेकिन जो अंदर से सफलता की खुशी महसूस होनी चाहिए, जो आनंद हमें महसूस होना चाहिए, जो हमारे साथ काम करने वालों को महसूस होना चाहिए, वो कम है। नंबर्स में अचीव हो रहा है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, खींच कर भी अचीव हो पाते हैं, लेकिन जो अनुभूति है कम है, डिफिकल्ट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की शक्ति को हम अपने प्रैक्टिकल कारोबार में, जीवन में कम अनुभव कर पा रहे हैं, कम यूज कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें, जैसे आपने कहा, कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। हम कुछ सिचुएशंस को देखेंगे और हर एक सिचुएशन के बारे में आपको अपने बाजू में जो आपके फ्रेंड बैठे हैं उनके साथ बातचीत करनी, ठीक है? एक मिनट हाथ मिलाएं आपके फ्रेंड के साथ जो बाजू में बैठे, अगर फ्रेंड नहीं है तो थोड़ा क्लोज किसी के साथ आ जाएं। अच्छा, थोड़ा दूरी है। अच्छा, फिर भी। तो ये एक सिचुएशन पहला है कि रिया जो है शी इज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छी गायिका है, और उनको पूरे नेशन से, पूरे देश से उनके गायन के लिए, उनके सिंगिंग के लिए बहुत क्रेडिट मिल रहा है, और उनको नए यूथ के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत फेमस है, उनकी आयु बहुत छोटी है, सेलिब्रिटी बन गई है 18 साल की आयु के लिए। तो हम क्या कहेंगे, क्या रिया संपूर्ण रूप से सफल है? क्या हम समझते हैं कि आगे चलकर आगे 5 वर्षों में भी रिया एक दीवा के रूप में अर्थात एक सुंदर गायिका के रूप में सफल हो पाएगी? 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अगर अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करें, आपके बाजू में आपके फ्रेंड है तो बातचीत करें उनके साथ। ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है, रिया सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन कोई अपने आर्ट के फील्ड में एक्सेलेंस है, तो क्या हम कहेंगे वो सफल है? भविष्य में भी 5 वर्षों में भी वो सफलता की दिशा में चल सकेंगी? क्या कहेंगे? थोड़ा समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं आपको 1 मिनट ही दे रही हूँ जी। क्या कहेंगे अब ग्रुप के साथ, आप शेयर करें, पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, वो अपनी उस समय जो सफलता उसको मिल रही है वो कैसे हैंडल करती है उसके ऊपर आधार है, और वो भविष्य में और सक्सेसफुल हो सकती है, उसका आधार क्या होगा? शी इज वेरी गुड एट सिंगिंग, शी इज बीन। अच्छा, उसको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। अच्छा, और हम क्या कहेंगे, रिया सफल है? अच्छा, ईगो नहीं आना चाहिए तब वो सफल है। अच्छा, तो शी हैज टू टेक केयर, उनको ये संभालना है कि उसको इस विशेषता या इस सफलता का जो अहम भाव है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अच्छा, आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल में क्या, क्योंकि वो फिर से एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है जो हम कितनी बार सुनते रहते हैं, आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता। आगे में जब बढ़ेगी तो कंपटीशन को कैसे वो डील कर सके, उसके लिए अपने मनोबल को भी उसे तैयार करना होगा, अपने मन की स्थिति को भी उस रूप में तैयार करना होगा। अर्थात सिर्फ सिंगिंग में वो आगे बढ़ रही है, क्या ये काफी है? नहीं, उसको बहुत और चीजों की भी संभाल करनी पड़ेगी, अपने मन की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, खास करके आगे चल के कॉम्पिटिशन होगा तब उसको कैसे वो हैंडल कर सके, ईगो सफलता के लिए नहीं आना चाहिए, संबंध कैसे वो मेंटेन करे, क्योंकि हम कई बार पेपर्स में पढ़ते हैं, नहीं छोटी सी आयु में कोई अपने आर्ट और कल्चर, एक्टिंग या कोई सिंगिंग या कोई भी फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन अपने मन की स्थिति को स्थिर नहीं रख सकता है, संबंधों में ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड करते हैं, सुनते हैं प्रैक्टिकल में? सो इट्स नॉट इनफ, अर्थात सिर्फ एक फील्ड में आगे बढ़ना वो सफलता संपूर्ण रूप से नहीं है। मुझे लगता है और भी सिचुएशंस है जो मैं आपको सिर्फ वर्णन कर लूंगी कि शायद इमेज नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान करेंगे अपना काम। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति है जिसने शायद अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में प्रगति बहुत की है, नहीं, या समाज में वो बहुत आगे बढ़ रहा है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उसने कैंसर एड के लिए बहुत सुंदर प्रोजेक्ट किया जिसमें काफी फंड्स रेज किया, बहुत सारी समाज से जुड़ी हुई जो संस्थाएं उसके साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज के कई लोगों को वो पहुंचकर उनको कोई ना कोई प्रकार के सुख की अनुभूति करा रहा है, तो क्या ये व्यक्ति सफल है? है? संपूर्ण रूप से आगे चलकर भी वो हमेशा सफल रहेगा? भविष्य के लिए क्या और चीज आवश्यक है? सिंसियर है सामाजिक सेवाओं में, तो क्या ये काफी है? फैमिली के लिए, फैमिली के साथ घर में वो कैसा है, फैमिली नीड्स को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, अपने प्रोफेशन में भी फोकस्ड है, अपने कारोबार में भी क्या वो फोकस्ड है, क्योंकि फैमिली को भी संभालना है, क्या वो उससे संतुष्ट है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण, हेल्थ भी कैसा है। तो सिर्फ समाज के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं और वहां बहुत रिकग्निशन है, तो ये संपूर्ण सफलता का प्रतीक नहीं है। परिवार को भी संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, वहां भी जिम्मेवारी है, नहीं, दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है और कोई क्षेत्र में, जैसे अपने परिवार या अपने स्वास्थ्य में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे संपूर्ण सफलता नहीं कहेंगे। तो कोई भी एक क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या इसको सफलता कहा जाएगा? नहीं। तो संपूर्ण सफलता, होलिस्टिक सक्सेस किसको कहेंगे? जहां संतुलन हो, बैलेंस हो। और हम देखते हैं, क्योंकि रोज आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, कि जहां ये संतुलन की कोई कमी आ जाती है, जहां वो व्यक्ति अपने मन की स्थिति को इतना दृढ़ नहीं बना पाता है, इतनी नम्रता नहीं रख पाता है, ईगो आ जाता है, या स्वास्थ्य उसका हलचल में आ जाता है, या परिवार उसके साथ इतना संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे चलकर वो सफलता क्या है, स्थायी नहीं हो पाती है, टिक नहीं पाती है। दूसरा जो सिचुएशन हमने देखा कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, कमलेश जो है वो बहुत मेधावी छात्रा है, बहुत एजुकेशन में, अपने पढ़ाई में बहुत आगे चला गया है। जो प्रोफेसर्स हैं वो समझते हैं कि आगे चलकर वो अपनी इस फील्ड में जरूर कोई ना कोई एक्सेलेंसी के पोजीशन में पहुंचेगा। तो क्या हम समझते हैं कि कमलेश जो है वो भविष्य के लिए भी सफल 100% होगा? उसके लिए और क्या चाहिए? ये सफलता उसकी स्थायी बनी रहे भविष्य में, उसके लिए और क्या चाहिए? बैलेंस। फिर से उसकी मनोस्थिति, उसका स्वास्थ्य, उसके पारिवारिक संबंध, उसके लोगों के साथ संबंध, उसके समाज के साथ संबंध, ये सब चीजों का बहुत महत्व है। तो संपूर्ण सफलता या होलिस्टिक सक्सेस जो है उसमें हम देखते हैं कि ये सब चीजें आ जाती हैं। तो हम फिर से आगे चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें अपने सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने के लिए किस क्षेत्र को महत्व देना पड़ेगा, फोकस जो है किस क्षेत्र में हमें रखना जरूरी है? वर्क, फैमिली, सेल्फ में सक्सेस या सेल्फ में फोकस रखने से क्या होगा? सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में या सेल्फ को आगे बढ़ाने में से कैसे सफलता होगी? फिर कहीं वर्क सफर नहीं होगा, फैमिली वाले थोड़ा कंप्लेन नहीं करेंगे? जैसे आप यहाँ आए हुए हैं 3-4 दिन, अगर आप फैमिली को फोन करते हैं या उनको कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम अपने सेल्फ के लिए स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाते ही जाएंगे, तो वो घबरा जाएंगे ना कि पता नहीं वहां ब्रह्मा कुमार इसके पास रह ना जाएंगे, नहीं थोड़ा थोड़ा डर लगेगा ना उनको। तो क्या हम सेल्फ पर अगर फोकस करते हैं तो क्या बाकी के दो क्षेत्रों को संतुलित रूप में आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे 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 बैलेंस होगा? सेल्फ पर फोकस करना अर्थात क्या? अपने स्वयं को के प्रति जो हम ध्यान रखते हैं, अर्थात अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली बनाना। सेल्फ को फोकस करना ही अर्थात अपने स्वयं को शक्तिशाली बना, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट की रियलिटी, जो सत्यता है स्वयं की, उसको जानना, लेकिन उसको सक्षम बनाना, उसको समर्थ बनाना। और जितना समय, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, बिजनेस में हैं, तो आप जानते हैं कि समय का इन्वेस्टमेंट वहीं किया जाता है जहां से रिटर्न आता है ना? नहीं, आप ध्यान रखते हैं ना कि जो भी आपके पास साधन है उसको कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिटर्न का आधार होगा। तो उस रूप में हम देखते हैं जितना समय, जितना टाइम, जितना ऊर्जा आपने स्वयं में इन्वेस्ट किया, अपने प्रति, अपने आप को सुंदर बनाने में, अपने आप को सक्षम बनाने में, अपने आप को समर्थ बनाने में प्रयोग किया, उतना क्या होगा? ऑटोमेटिकली हम जब परिवार में, संबंधों में आएंगे, तो वहां क्या होगा? हमारे अंतर की सत्यता, स्पिरिट की रियलिटी। आज सुबह आपने हमारे राजयोग के पहले सेशन में जाना कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल गुण क्या है, सतोगुणी आत्मा। तो कौन से गुण है उसके, जो आज दीदी ने भी अभी हमको याद कराया? शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो ये जो आत्मा की रियलिटी है, स्पिरिट की रियलिटी, इसको जितना समय सारे दिन में आपने शक्तिशाली बनाया, इसकी स्मृति को जागृत किया और उसको शक्तिशाली बनाकर उसको यूज किया, प्रयोग किया अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने संबंध संपर्क में, परिस्थितियों के निवारण में, जितना इसको यूज किया, जितना टाइम आपने उसमें इन्वेस्ट किया, उतना संबंधों में क्या होगा? जब ये गुणों को आप अपने अंदर महसूस करके उनके साथ संपर्क में आएंगे, तो स्पिरिचुअलिटी माना अपनी भी रियलिटी को जानना और जिनसे संपर्क में आते हैं उनको भी किस दृष्टि से देखना। अब तो हमने जान लिया अपना परिचय कि हम तो इस शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है, तो जिनसे भी संपर्क में आते हैं वो भी कौन है? आध्यात्मिक शक्ति, वो भी आत्मा है। और उनकी भी रियलिटी, उनकी भी सत्यता को समझकर उनके साथ फिर संपर्क में आना, उनकी भी सत्यता को स्मृति में लाकर कि वो भी, उनके भाई सतोगुणी आत्मा है तो वो भी ओरिजिनली कैसे हैं, उनकी भी सत्यता क्या है कि वो भी शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उनकी कोई विशेषता को देखना। उस समय जो भी कारोबार है, संबंध में आ रहे हैं, उस समय उनकी विशेषता को देखकर संबंध में आना, तो परिवार में क्या होगा? हार्मनी होगी, समीपता होगी, स्नेह की लेन देन ज्यादा होगी। आज परिवार के साथ क्योंकि हम बिजी रहते हैं बिजनेस में और व्यापार में, टाइम कम दे पाते हैं, सही बात है, टाइम कम। अवेकन आवर्स, जो जागृत समय है व्यापारी के लिए या उद्योग में जो काम करते हैं उनके लिए, कॉर्पोरेट लाइफ में जागृत समय सबसे ज्यादा कहां बिता रहे हैं? कारोबार में। बिजनेस में तो टाइम शेड्यूल है ही नहीं, तो मन से तो 24 घंटे आप अपने व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, घर में जाकर भी फोन आता रहता है, नहीं? तो इसलिए जितना समय हम इस आध्यात्मिकता को, इस गुणों को अनुभव करने में और संबंध संपर्क उसके आधार से आएंगे, तो समय के साथ सुख की लेन देन, अपने परिवार के साथ सुख की लेन देन ज्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो और सुंदर बनती जाएगी, एक दूसरे के लिए जो संबंधों में जो समीपता है वो बढ़ती जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि कारोबार में क्या होगा, जब हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, अपने मन और बुद्धि को सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा मैं स्वयं अर्थात हमारी कौन सी तीन मुख्य फैकल्टीज हैं, अंतर की संस्था में कौन है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो जैसे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं ना, तो उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो ये आपके तीन मुख्य अंतर की संस्था के डिपार्टमेंट्स हैं। तो जितना अपने को सक्षम बनाया, अर्थात मन को हमने सकारात्मक चिंतन करने की आदत, दिशा दे दी, बुद्धि को हमने त्रिकालदर्शी बना दिया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, संस्कार जो है जो कारोबार में प्रयोग करने के लिए जो आवश्यक गुण और शक्तियां हैं वो हम यूज कर सके। तो कारोबार में, वर्क में क्या होगा, मन को आप दिशा दे पाए तो जो भी परिस्थिति आएगी उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स अर्थात रचनात्मक सोच सकेंगे, कोई ना कोई उसका नया समाधान, नया विचार, क्योंकि जिस रूप से आज चल रहे हैं उसमें नवीनता आवश्यक है, तब तो नई परिस्थितियों को आप व्यापार में समाधान कर सकते हैं, बुद्धि से त्रिकालदर्शी रह सकेंगे, पास्ट के अनुभवों के आधार से वर्तमान में निर्णय लेंगे, लेकिन भविष्य में उस निर्णय का क्या इम्पैक्ट होगा उसको समझकर वर्तमान में निर्णय लेंगे, जरूरी है। व्यापारी अगर वर्तमान का ही देखे, भविष्य के बारे में सोचे ही नहीं, बस निर्णय ले ले, नुकसान हो जाएगा। भविष्य में क्या होना है, क्या रूल्स आ रहे हैं, क्या लीगल इम्प्लिकेशंस है, क्या बिजनेस में आगे उसका बेनिफिट मिल सकता है या नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ समझकर निर्णय लेना होगा। संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जितना हमने स्वयं को सक्षम बनाया उतना हम व्यापार में भी ज्यादा सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति ज्यादा हमारे लिए उपलब्ध होगी। व्यापार में आधार ही हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति है। तो इसलिए हमने आज तक समझा कि हमें वर्क पर ही फोकस करना है, तब उसको आगे बढ़ाएंगे। या परिवार को हम थोड़ा समय देने के लिए खींचातान में रहते थे और वो संतुलन नहीं हो पाता था, लेकिन आध्यात्मिकता से ऑटोमेटिकली जितना हम ये स्वयं को हमने सक्षम बनाया उन दोनों क्षेत्रों में संतुलन लाना सहज हो जाता है। अब जब हम स्वयं कह रहे हैं तो हमने आध्यात्मिक परिचय सुबह को प्राप्त किया कि हम ये शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक सत्ता है, लेकिन इस आंतरिक स्व को सक्षम बनाने का हमारे दैनिक कारोबार पर क्या प्रभाव होगा। तो जैसे एक बहुत सुंदर मिसाल एक व्हील के रूप में दिया गया, एक चाक, चाक है ना, व्हील आप देखते होंगे, खास करके गांव में हम देखते हैं अभी भी बुलक काठ में बैलगाड़ी में ये व्हील तो बहुत अच्छी तरह प्रयोग होता है। इसका बीच का हिस्सा जिसको धुरी भी कहते हैं, धुरी कहते हैं, हब जो कहते हैं, और कोई नाम है धुरी को, और कोई नाम कहते हैं, समझा, धुरी एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है या धुरी है, इस एक्सल जो इसका जो महत्व है वो इस व्हील में बहुत महत्व है। अब यहां जो मेटल यूज किया जाता है, जो हब है, वो मेटल, वो धातु जो यूज किया जाता है, उसकी विशेषता क्या होगी, कैसा होना चाहिए वो धुरी, बहुत मजबूत, और मजबूत के साथ साथ स्थिर। जितना वो मजबूत और स्थिर उतना ये व्हील की स्पीड होगी, है ना, जब बैलगाड़ी में है या कोई और रूप से यूज किया जा रहा है, जितना धुरी जो है, हब जो है, स्थिर है और सक्षम है उतना उस व्हील की स्पीड है। और जैसे ये धुरी कमजोर हो जाए या हिलना शुरू करें क्या होगा, व्हील क्या होगा, अनस्टेबल। पहले तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर और भी हिलना बंद नहीं होता है, हलचल बंद नहीं होती है धुरी की, तो क्या होगा, व्हील बाहर निकल जाएगा। तो उसी रूप से ये हमारे जीवन की अनेक जो परिस्थितियां हैं उसका धुरी क्या है, उसका हब क्या है, हमारा स्वयं, हमारा मन, हमारी मन की स्थिति, आत्मा और आत्मा के अंदर ये मन की स्थिति। तो मन की स्थिति अर्थात हम स्वयं जितना ही सक्षम होंगे, सारे दिन में जितना हमने अपनी दिनचर्या में टाइम निकालकर अपने आप को शक्तिशाली बनाया, समर्थ बनाया, अपने गुण और शक्तियों को मजबूत किया है, और जितना हम स्थिर हैं उतना क्या होगा, जो भी हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में हमारी जिम्मेवारियां हैं, उसको हम निभा सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये हलचल मन की स्थिति की होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा, हम व्हील की स्पीड अर्थात हमारे कारोबार में, हमारे व्यवसाय में जो परिस्थितियां आ रही है उसको सही जवाब, सही प्रतिक्रिया देने की जो हमारी गति है वो धीमी हो जाती, कुछ मिस हो जाता है, कुछ कर पाते हैं कुछ रह जाता है, फिर सोचना अच्छा कल करेंगे, देखेंगे, टाइम पर नहीं हुआ। और फिर अगर ये और भी कायम रहता है ये हलचल की स्थिति, तो क्या होगा, फिर हमारे कोई भी जीवन के एक क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, नहीं, कभी किसी का स्वास्थ्य जो है वो डाउन हो जाता है, कोई ना कोई प्रकार की बीमारी आ जाती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कहते हैं ना जैसे बिजनेस बढ़ता है, तो आजकल नहीं, हाँ आजकल कहाँ भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो हर एक कंपनी से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसे कैंपेन होता है, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री। तो क्या होता है, जैसे हमारी प्रगति बिजनेस में होती है, हमारे पोजिशन में होती है, फ्री में क्या आता जाता है, थोड़ा सा डायबिटीज, थोड़ा सा हाइपरटेंशन आ जाता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव आता है, संबंधों के क्षेत्र में। कुछ स्ट्रेस से, वो परेशानी से हम घर में आते हैं तो जो आपस में विचारों में, बातचीत में जो मधुरता है वो कम हो जाती। कारोबार में भी, ऑफिस में भी प्रेशर में रहते हैं तो थोड़ा सा हम आ जाता है। इसलिए जो पारिवारिक फीलिंग है वर्क प्लेस पे, जो टीम स्पिरिट है, वहां भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये धुरी जो है, हब को शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है। जितना हमने आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं, जब हम स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुनते हैं तो हमको लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन वास्तव में स्पिरिट और रियलिटी, अपने स्वयं की सत्यता को जानकर उसको अनुभव करना, उसको अपने दैनिक कर्म में, कारोबार में, संबंधों में प्रयोग करना। तो जितना ये अंतर में हमारी धुरी सक्षम होती जाती है, हम अंतर से वो अनुभव करना आरंभ करते हैं अपनी सत्यता को। अभी ये शब्द है, समझ है कि मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन जैसे आपको ये अनुभव होना आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा, वो अंतर की जो अनुभूति है वो हमारे हर एक क्षेत्र में हमें कोई ना कोई प्रगति, कोई ना कोई विशेष अनुभूति दिलाएगी। तो जो ये आंतरिक स्व सक्षम हो जाता है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, हेल्थ में क्या होता है जी, फिट रहते हैं नहीं। और हम देखते हैं जो भी इस समय हमारे पास कोई शारीरिक व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, वो कंट्रोल में आ जाती है। हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हैं जो ये मेडिटेशन रोज अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, राजयोगी जीवन शैली अपना ली, तो धीरे धीरे उनकी बीमारियां जो है कंट्रोल में आ गई। डायबिटीज वेल होगा लेकिन धीरे धीरे दवाई कम होते होते स्टेबल हो जाता है। वैसे तो डायबिटीज का हमारा बहुत सुंदर एक कैंप भी लगता है, हमारा मेडिकल विंग है जो कई ऐसी बीमारियों के साथ बहुत सुंदर एक्टिविटी प्रयोग के रूप में प्रोग्राम कराते हैं, जहां पेशेंट्स आते हैं उनको राजयोग का लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज, सबसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, कैड रिग्रेशन हमारा प्रोग्राम है, तो ये सब कार्यक्रमों में प्रैक्टिकल में वो अनुभव करते हैं कि वो ज्यादा स्वस्थ हो गए। शरीर के प्रति रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। जो आज हमको बीमारी का भय होता है उससे हमारा शरीर और बीमार होता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे सभी बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, 90% इलनेसेस क्या है, साइकोसोमैटिक। तो निश्चिंत होकर शरीर को हम बहुत स्वस्थ रखते हैं, उसकी जिम्मेवारी रहते हैं, क्योंकि शरीर भी आत्मा के लिए जैसे एक मंदिर के समान है। तो मंदिर के लिए भी हम मन में हम क्या, जैसे ये शब्द मंदिर या मस्जिद या कोई भी ऐसे चर्च मन में शब्द आ जाता है तो हमें उसके प्रति बहुत आदर रहता है कि बहुत अमूल्य चीज है। तो शरीर भी हमारे लिए एक अमूल्य इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, परमात्मा का दिया हुआ, तो इसकी संभाल रखते हैं लेकिन भय समाप्त हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में क्या आएगा, जब हम आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करेंगे। हम एक दूसरे के साथ व्यवहार तो अच्छा रखते हैं, उसका अभी ध्यान है कि हम किस रूप से एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, लेकिन हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं, विचार, वो भी शुद्ध और शुभ बनते जाते आवश्यक है। जैसे अगर आप सोचिए कि परिवार है, या आप कारोबार में ही चले जाएं, आप व्यवसाय में जहां काम करते हैं, ठीक है, अगर आपकी अपनी छोटी इंडस्ट्री है तो आप हैं, आपके मैनेजर है, वर्कर्स हैं, तो हम एक दूसरे से व्यवहार ठीक रखते हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मीटिंग हो रही है और हम एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ये हम सुन सकें तो संबंध और समीप आएंगे या दूरी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी नहीं? नहीं, क्योंकि कई बार हम व्यवहार तो ठीक रख लेते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति सोच हमारा शुद्ध नहीं रहता, हमें लगता है व्यक्ति ऐसा ही है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी मुझे मदद करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, कर ले तो बहुत अच्छा मगर बहुत मुश्किल है, करेगा तो नहीं, नहीं? तो हमारी एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे के प्रति शुद्ध नहीं है। तो आध्यात्मिकता अर्थात यहां हम अपने विचार और भावनाओं पर भी काम करते हैं, इसने बहुत सुंदर कहा है कि रिलेशनशिप्स आर मेड आउट ऑफ व्हाट वी थिंक अबाउट ईच अदर, नॉट ओनली अबाउट हाउ वी टॉक टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ हम जो व्यवहार करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाएं, जिसको आज हम वाइब्रेशन के रूप में समझते हैं, जो ऊर्जा एक दूसरे के प्रति हमारी भावनाओं के द्वारा हम एक दूसरे के साथ प्रदान करते हैं. और तीसरा हम देखते हैं फिर जिम्मेवारी, क्योंकि चाहे परिवार है चाहे कारोबार है, रोज जिम्मेवारियां तो है ही. आप यहां भी इस कैंपस में देखेंगे हर एक की अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. जो भी हमारे समर्पित भाई बहन हैं उनके साथ हमारे और भी गृहस्थ में रहने वाले सेवाधारी भाई बहन आए हैं, तो जिम्मेवारी तो सबको निभानी है. लेकिन जिम्मेवारी निभाते हुए मन कैसे रहेगा? हल्कापन रहेगा, लाइट रहेगा, खुशी से जिम्मेवारी निभाएंगे. हम कहीं ना कहीं अपने आप को फिर निमित्त फील करेंगे और परमात्मा करण करावन हार मुझसे कार्य करा रहा है. तो जिम्मेवारी का जो बोझ है, जो मानसिक थकान है, वो नहीं रहेगी. खुशी से जिम्मेवारी. जैसे परिवार में कोई बहुत सुंदर प्रसंग होता है, कोई परिवार में आपकी शादी है या किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको बोझ लगता है, थकान लगती है? नहीं. क्यों? खुशी से कर रहे हैं, खुशी से, आनंद से कर रहे हैं. तो उसी रूप से हम देखते हैं जिम्मेवारियां भी बहुत सहज लगती हैं. और हम अपना हर रोल, जो भी परिवार में है या कारोबार में है, वो रोल हम बहुत सुंदरता से प्रयोग कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. हर रोल को समय पर प्ले करके उस रोल से फिर से हम विथड्रॉ कर लेते हैं. नहीं, एक्टर की विशेषता है रोल प्ले करें, लेकिन उसकी अपनी स्मृति क्या होगी? अपनी सत्य स्मृति होगी. जैसे कोई भी एक्टर ले लो, अमिताभ बच्चन है, जो रोल प्ले करेंगे. कोई फिल्म है जैसे कूली, तो रोल प्ले किया कूली का, लेकिन अपनी स्मृति अपने प्रति क्या रखा? वो कौन है? उनको क्या याद था अपने लिए? मैं कौन हूं? अमिताभ बच्चन हूं. मैं एक रोल, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूं और मैं बहुत अनुभवी एक्टर हूं. मैं ये रोल क्या प्ले कर रहा हूं? कूली का. अगर वो सोचना शुरू करे मैं कूली हूं, मैं हूं ही कूली, तो उसके बाद फिर दूसरा रोल प्ले कर सकेंगे? नहीं. एक ही दिन में कितनी सारी शूटिंग्स होगी? नहीं. तो रोल कॉन्शियस नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर हर रोल को प्ले करने वाले बन जाएंगे. नहीं? तो परिवार है तो वहां कौन सा रोल है? आप बिजनेस में आप वहां के सीईओ हैं, मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, जो भी है. लेकिन घर में किसका आगमन होगा? घर में किसकी का इंतजार है? किसका इंतजार है? घर का प्रोप्राइटर, घर का प्रेसिडेंट, घर का सीईओ अलग है. नहीं. तो घर में किसका इंतजार है? किसका? पिता का है ना. एक हस्बैंड का है, बेटे का है, पेरेंट्स आपको याद करते हैं. तो इसलिए रोल चेंज हो जाएगा ना. तो बच्चों के साथ भी हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो रोल क्या है हमारा उनके साथ? पेरेंट का रोल कम, लेकिन फ्रेंड का रोल ज्यादा. नहीं. अगर हम फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, वो पेरेंटल कॉन्शियस में रहते हैं, तो क्या होता है? वहां भी फिर थोड़ा खींचातान हो जाती है. तो हर रोल को हम बहुत अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं, जिसके आधार से अपनी अंतर की दुनिया को हम सुंदर बना लेते हैं. और जब हमारी अंतर की दुनिया, वर्ल्ड हमारा सुंदर और सफल बन जाता है, हम अंदर से खुशी का अनुभव कर लेते हैं, तो वर्ल्ड के लिए भी हम क्या बन जाते हैं? एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा. दूसरों को भी हमें देखकर खुशी होती है, प्रेरणा मिलती है. तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हमारे अंदर ये गुण और शक्तियों को हमें प्रयोग करना है. अब एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा ही समय हम लेंगे बाकी का. तो ये आप इस लिस्ट को देख रहे हैं, इस लिस्ट में बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं. ठीक है. तो ये लिस्ट में ये जो गुण है, इनमें से कोई भी एक गुण ये लिस्ट में न भी हो, आपको लगता है गुण आपके अंदर है, तो आपको ये लिस्ट में से या कोई भी अपने अंदर में आपको जो प्रेरणा मिले, कोई गुण के बारे में याद करना है जो आपको लगता है कि ये विशेषता जैसे परमात्मा की देन है, ये आपका परिचय है. जब भी आप कारोबार में आते हैं, परिवार में आते हैं, तो ये गुण लोगों को आपके अंदर बहुत सहज महसूस होता है. उनको आपके अंदर ये महसूसता आती है, आपके अंदर वो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त होता है, रिफ्लेक्ट होता है. प्रभावशाली गुण आपके अंदर, सबसे प्रभावशाली सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? आप एक मिनट के लिए सोचिएगा, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से चूज करें या कोई और शब्द भी हो तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, जो भी आप सिर्फ सोचिए, मन के अंदर रखिए, फिर एक छोटा सा एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, फिक्स कर लिया अपना गुण? फिक्स है? याद कर लिया आपने अपना गुण? अच्छा, अब नहीं पहने ना? मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इंटरेक्ट करना है। हमारे फ्रेंड है अवनीबेन, तो अवनीबेन ने भी अपना गुण याद कर लिया है। अब मैं अवनीबेन के साथ फिर से अपना परिचय कराना चाहूंगी। अब मैं बहुत लकी हूं कि मैं सिस्टर के साथ ही सेवा में रहती हूँ बॉम्बे में, और बहुत अच्छा उनके साथ प्रेरणा भी मिलती है, उनके साथ बहुत अच्छी सेवाएं भी साथ में हम करते हैं। लेकिन फिर से मैं अपना परिचय उनके साथ उस गुण के आधार से करना चाहूंगी। आपको इसी रूप से अपने फ्रेंड के साथ करना है, ठीक है? आप देखना, आई एम प्योरिटी, और मैं पवित्रता हूं, और मैं चाहूंगी कि ये पवित्रता का गुण आपको एक सौगात के रूप में दे दूं। जितना हमारा मन, संकल्प, भावनाएं पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उतना ही परमात्मा से हम नजदीक जा सकते हैं और दूसरों को सुख दे सकते हैं। थैंक यू पवित्रता। आई एम सिंप्लिसिटी, कहते सिंपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सो मैं आपको इस सिंप्लिसिटी को आपको सौगात के रूप में देती हूँ। थैंक यू सरलता, सिंप्लिसिटी, थैंक यू। ठीक है, तो आपको अपनी अपना परिचय तो देना है, लेकिन उस गुण को क्या करना है? गिफ्ट के रूप में अपने फ्रेंड को देना है। ठीक है ना? तो आज तो आपको बहुत सारे सुंदर गिफ्ट मिल सकते हैं, नहीं? और ये गिफ्ट की विशेषता है कि ये अविनाशी रहेंगी। तो जब आप गिफ्ट देंगे तो बहुत शुभ भावना से देना कि ये गुण परमात्मा की ओर से आप उनको गिफ्ट में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सब सोफास पर बैठे हैं या पीछे चेयर्स में, आपको दो लोगों के साथ ये परिचय करना है। ठीक है, तो दो मिनट के लिए आपके बाजू में जो दो फ्रेंड्स हैं, दो लोगों के साथ आपको परिचय करना है। याद करना, आपको अपना नाम नहीं बताना, ये नहीं मैं फलाना हूं ये ध्याना से, वो एक्सरसाइज हो गई दीदी के क्लास में, ये एक्सरसाइज में सिर्फ गुणों की लेन देन करना है। ठीक है, तो कर लीजिए, अपने दो फ्रेंड्स के साथ अपना परिचय कर लीजिए इस रूप से। अगर आपको थोड़ा उठना हो तो एक मिनट उठ भी लीजिए, या बैठे बैठे भी दो फ्रेंड्स आज ये बाजू और ये बाजू, लेफ्ट और राइट, कोशिश कीजिए किसी से ऐसा परिचय कीजिए जिनको आप जानते नहीं हो, और भी आनंद आएगा आपको। आसपास देखिए, कोई न जानने वाले हो, परिचित नहीं हो, उनसे भी आप ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक नहीं है, मिनिमम दो लोगों से आपको गिफ्ट लेनी भी है और गिफ्ट देनी भी है। यहाँ ब्रदर अकेले बैठे हैं, प्लीज बात कीजिए उनसे। हर एक को दो के साथ तो शेयर करना ही है, दो को गिफ्ट देनी है और लेनी है। हो गया आपका? उठिए उठिए, यहाँ फ्रेंड्स हैं आपके, आइए थोड़ा नजदीक आ जाइए। मिनिमम दो लोगों के साथ, विशेष उन लोगों के साथ जिनके साथ आप परिचित नहीं हैं। जिनके साथ आप बैठे हैं तो वो तो आपके फैमिली मेंबर हैं, जिनके साथ आप परिचित नहीं हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। कर लिया? कईयों ने नहीं भी किया, नहीं नहीं गिफ्ट नहीं देना चाहते हैं, अच्छा लेना तो चाहते हैं ना। देखिए, अच्छा किन्होंने किया ये एक्सरसाइज? अच्छा, बाकी सबको देखने में खुशी मिली, चलो। अच्छा, अब जिन्होंने भी किया उनको कैसे लगा? अब परिचय की लेन देन करना कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी आपने सेशन में किया था, लेकिन इसमें कुछ अंतर था? क्या अंतर था? बहुत खुशी हुई जी, हमको कुछ गुण मिला सामने वाले से, और क्या अनुभव हुआ? आत्मिक संबंध का रियलाइजेशन हुआ, और जी शेयरिंग फील हुआ जी, शक्ति महसूस हुई, समीपता महसूस हुई। कोई नए व्यक्ति थे लेकिन उनसे बातचीत करने से ही समीप फील किया, अपरिचित व्यक्ति था, लेकिन फिर भी लगा बहुत अच्छा है, मैं उनसे समीप हूं। ऐसा क्यों लगा? आपने कितना टाइम यूज किया परिचय करने में? एक मिनट, उससे ज्यादा नहीं, नहीं? लेकिन फिर भी इसमें बहुत खुशी भी हुई, समीपता भी हुई और शक्ति भी मिली। क्यों? हम बहुत समय बिताते हैं लोगों के साथ कारोबार करने में। बहुत अच्छा, सेट भी हो गई। बहुत अच्छा, तो हमने देखा कि आपको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहां लेन देन किस आधार से हुई? आंतरिक लेन देन। हमने अपने बाह्य स्व को थोड़े समय के लिए, उस परिचय को थोड़े समय के लिए भूले, थोड़ा समय उसको साइड में रख लिया, और जो हमारा अंतर का स्व है, हमारे गुण, हमारी विशेषताओं के आधार से उनके साथ बात की। उनके भी बाहर के, उनके बाह्य परिचय को नहीं देखा, उनको भी उनकी विशेषता के आधार से जाना, और फिर हमने वो शुभ भावनाओं की लेन देन की। तो आध्यात्मिकता अर्थात जिनके साथ भी रोज आप व्यवसाय में मिलते हैं, नहीं, बिजनेस भी करते हैं तो भी लोगों के साथ तो लेन देन है ही। आप अगर कंपनी में है, कॉर्पोरेट में है, तो वहां भी आपको रोज कनेक्ट करना है लोगों से। जिनके साथ भी आप कारोबार करते हैं, व्यवसाय में या अपने कॉर्पोरेट में, हर बार जब उनके साथ आप संपर्क में आते हैं, उनकी विशेषता को मन में रखते हुए अगर उनसे बातचीत करें, जैसे अभी हमने किया वैसे बातचीत नहीं, आप उनको ये नहीं कहेंगे कि मैं ये गुण हूं, कारोबार की ही बात करेंगे क्योंकि समय की कमी रहेगी, तो कारोबार की बात करेंगे, लेकिन मन में आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत सहनशील है, ये व्यक्ति जो है बहुत सत्यता वाला है, ये व्यक्ति जो बहुत सहयोगी है, ये व्यक्ति का मन बहुत शुद्ध है। तो उनके गुण को, उनकी विशेषता को मन में रखते हुए फिर आप उनके साथ कारोबार करेंगे, इससे कुछ आपको महसूस होगा, कुछ परिवर्तन महसूस होगा। क्या होगा व्यवसाय में? संबंध, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। अच्छा जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, माना हर कारोबार, सारे दिन में जो भी कम्युनिकेशन कारोबार होगा, उसमें कारोबार तो करेंगे, बातचीत करेंगे, लेन देन विचारों के करेंगे, समाधान समस्याओं का भी होता रहेगा, लेकिन साथ में सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन भी होती रहेगी, जिससे क्या होगा, सारा दिन हल्कापन रहेगा। अब वास्तव में आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल में क्या करती है? हमें ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हम बार बार इसको महत्व दे रहे हैं, शक्ति जो है, अनुभूतियां जो है। तो कौन सी ऊर्जा? स्व तो है, लेकिन हम स्वयं में हमेशा स्वमान में रहना शुरू कर लेते हैं, सेल्फ एस्टीम। कोई भी परिस्थिति में हम अपने मन की स्थिति को बहुत लाइट रख सकते, स्वमान में रहते हैं। स्वमान अर्थात अपने प्रति शुद्ध भावनाएं, अपने अपने आप को मान देना, अपनी विशेषताओं को याद करके, जो परमात्मा की प्रभु देन है, उसके आधार से सारा दिन संबंधों में और कारोबार में आना। भविष्य के लिए क्या हो जाता है? ऑप्टिमिज्म। भविष्य की हर परिस्थिति के लिए हम शुभ सोचना शुरू करते हैं कि जो आगे होगा प्रगति है, उन्नति है, उसमें ऑप्टिमिज्म आ जाएगा। पास्ट के प्रति क्या होगा? डिफिकल्ट, जो भी परिस्थितियां हमने फेस की हैं, अब हम समझने लगेंगे कि इन सब के पीछे क्या था, कोई ना कोई शिक्षा थी, कोई ना कोई विशेष अनुभव था, इन सब चीजों ने मेरे अंतर को क्या किया, सक्षम बनाया। नहीं? जो भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं, असफलताएं, वो हमें क्या करती हैं, अंदर ही अंदर क्या करती हैं, मजबूत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। हमारे आध्यात्मिक शब्दों में परमात्मा हमें कहता है, हर तूफान एक तोहफा ले आता है, अनुभवी बनाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट क्या होगा, आध्यात्मिकता से अभी के प्रेजेंट में हमेशा नवीनता होगी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम राइट ऑप्शन को हमेशा यूज कर सकेंगे। हमारे संबंधों में क्या होगा, संबंध सिर्फ होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें शुभ भावनाओं की लेन देन, जो भी हमने देखा वो सकारात्मक ऊर्जा की लेन देन। हर बार जब हम अपने परिवार के साथ मिलेंगे, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, माता पिता के साथ, वो शुभ भावनाओं की लेन देन। ऑफिस में भी जो भी अपने हमारे व्यवसायी साथी हैं उनके साथ भी मिलेंगे या उनके बारे में याद करेंगे तो भी शुभ भावनाओं की लेन देन होगी। हमारा हर रोल हम समय के अनुसार उसमें क्रिएटिविटी, नवीनता लाएंगे। पेरेंट तो हैं लेकिन धीरे धीरे हमें पेरेंट के साथ क्या करना है, फ्रेंड ज्यादा बनना है। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि घर में आप बिजनेसमैन नहीं हैं, घर में आप कोई प्रेसिडेंट नहीं हैं कोई कंपनी के, घर में आप पिता से भी ज्यादा भी मित्र हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपको बहुत सारी चीजें सिखा भी सकते हैं। नहीं, आपके मोबाइल के बारे में लेटेस्ट एप्लीकेशन कौन सिखाता है आपको, बच्चे। तो फ्रेंड बन गए, सीखना और शेयरिंग हो जाता है। तो हर रोल में नवीनता आती है। कंपनी में भी अगर हम हैं तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को भी साथी के रूप में फील करते हैं, क्योंकि जितना वो सक्षम होंगे उतना आप फ्री होते जाएंगे। तो इसलिए हर रोल को नवीनता उसमें लाते रहेंगे, ज्ञान को प्रयोग करना शुरू करते हैं। समझ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दोनों में गैप है। बहुत कुछ जानना और क्या करना प्रैक्टिकल में, दोनों में अंतर है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना शुरू करते हैं। धन जो है उसको बहुत समझ से यूज करते हैं, ट्रस्टी। ईश्वर ने दिया है और परिवार भी ईश्वर का है, उसकी जवाबदारियां हैं। तो परमात्मा ने अपने हमारे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये दिया है, तो मुझे उसी रूप से ट्रस्टी होकर यूज करना है। कंपनी में भी जो धन हो रहा है, व्यवसाय में भी, तो फिर भी वहां भी ट्रस्टी हम है। और फिर समय जो है उसकी वैल्यू महसूस होती है, हर क्षण, हर संकल्प की वैल्यू, हर क्षण की वैल्यू। तो क्या होता है, एक्यूरेसी हमारे लाइफ में आती जाती है। आध्यात्मिकता अर्थात चिंतन तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस चिंतन में स्थिरता, चिंतन में सकारात्मकता आती जाती है। शब्दों में ऐसे शब्द जो समीप लाए हमें औरों से, ब्रिज बन सके, समीपता लाते जाए, मिठास, मधुरता, सुख की लेन देन, खुशी की लेन देन। और कर्म ऐसे हो जो हमारा हर कर्म औरों को रिस्पेक्ट का अनुभव हो, सुख दे सके, जिससे उनको हमारे लिए बहुत प्यार हो, रिस्पेक्ट बढ़े, हमारा भी उनके साथ रिस्पेक्ट। और क्योंकि हर कर्म का इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है। तो हम देखते हैं आध्यात्मिकता अर्थात ये ऊर्जा हमारे अंदर आती जाती है, जिससे हम नवीनता की ओर जाते हैं। नहीं तो हम देखते हैं जहां आध्यात्मिकता फाउंडेशन में नहीं है, वहां कोई भी व्यवसाय, कोई भी हम देखते हैं कंपनी हो, वो जब भी कोई बड़ी डिफिकल्टी की सिचुएशन आती है तो क्रम्बल हो जाती है। नहीं, रोज आप पेपर पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं ये वो, तो जो भी संस्थाएं हैं जहां वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, क्या होता है, छोटी या बड़ी डिफीट उनको फेस करनी पड़ती। बहुत वर्ष पहले एनरॉन करके एक अब्रॉड में बहुत बड़ी कंपनी थी, मल्टीनेशनल, याद है आपको, कईयों को पता है, 2000 में उसमें एथिकल प्रॉब्लम हुआ, कंपनी बंद हो गई। जो लीडर थी, परिवर्तन के लिए, प्रगति, वैल्यू चेंज के लिए, हम देखते हैं कई ऐसी संस्थाएं, नोकिया है, चेंज नहीं कर पाई समय के अनुसार तो क्या हुआ, नहीं रही। तो इसलिए वैल्यूज जो है, आध्यात्मिकता अर्थात नैतिकता, वैल्यूज और परिवर्तन की भी शक्ति, उसकी समझ तो वो आवश्यक है। और कर्म में सक्सेस दिखाई दे, एक्शन में, और इसलिए हम देखते हैं जहां एक्शन में सक्सेस है वहां ये स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में हमें खुशी और सुख का अनुभव कराएगी। सक्सेस सिर्फ कुछ अचीव करना नहीं है, अनुभव करना है, अनुभव कराना है। हमारा परिवार हमसे वो अनुभव फील करे, हम जहां कार्य करते हैं वहां हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे व्यवसाय के साथी हैं, जो हम कॉर्पोरेट में हमारा टीम है, वो लोग हमसे वो अनुभव करें। तो क्या अनुभव करें, हमारा स्वास्थ्य जो है वो शक्तिशाली बने, वैल्यू हो जाए, ये हेल्दी हम बन जाए, बीमारियां हो लेकिन हमारा शरीर हमें हमेशा सहयोगी बन जाए, हमारे संबंधों में स्नेह की लेन देन, सुख की लेन देन, खुशी की लेन देन बढ़ती जाए हर स्थान पर, हर एक क्षेत्र में। और हर जिम्मेवारी हमें उमंग उत्साह, हमें कोई नवीनता का अनुभव कराए, हमें आगे बढ़ाए, हर उमंग उत्साह से बहुत खुशी से हम हर कार्य को कर सकें। तो प्रैक्टिकल में ये अनुभव हमें करना है। तो इसलिए अभी हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद फिर आगे के हमारे शाम के सेशंस में ये चीजों को क्लैरिटी मिलेगी। तो 2 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सभी गुणों का स्रोत कौन है। हमें शक्तिशाली तो बनाना है, लेकिन रिचार्ज करने के लिए स्रोत कौन है और उससे हमारी समीपता कितनी है, परमात्मा कितना दूर है हमसे, कितना दूर है, एक संकल्प से नहीं, वो हमारे सदा साथ है। बस हमें वो स्मृति को क्या करना है, ऑन करना है। नहीं, रेडियो है, हमें कुछ सुनना है, रेडियो सिटी, तो क्या करेंगे, ट्यून करेंगे, तभी सुनेंगे ना। तो उस ईश्वर के साथ भी कनेक्ट करना सिर्फ संकल्प। तो कल आपको फिर परमात्मा का परिचय भी राजयोग शिविर में प्राप्त हो जाएगा और फिर विधि का भी अनुभव होगा। आज फिर से हम 1 मिनट के लिए ईश्वर को याद करेंगे।